नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में एक ही चरण के विधानसभा चुनाव में दोपहर 1 बजे तक 32.18% से अधिक मतदान। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी शांतिपूर्ण मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक 47.92% से अधिक वोट डाले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना पहुंच गए हैं। वे आज शाम जॉर्ज टाउन में राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफान अली से बातचीत करेंगे। गयाना ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस देने की घोषणा की। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज गोवा में शुरू होगा। शीर्ष भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु चीन के शेंझेन में चाइना मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची और बिहार में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला चीन से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक ही चरण में और झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। महाराष्ट्र में विधानसभा की सभी 288 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार दिन में 1 बजे तक 32.18% से अधिक मतदान हुआ। इस बार कुल 4,136 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 2,086 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता प्रार्थना से। प्रार्थना, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रमुख उम्मीदवार कौन कौन है, साथ ही ये भी बताएं कि इस चुनाव में जो दो प्रमुख गठबंधन है, महायुति और महाविकास अघाड़ी, उनकी स्थिति क्या है?
प्रमुख उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कुकरी भाजपा खाड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस नागपुर पश्चिम विधानसभा सीट से 6ठी बार चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष नाना पटोले साकोली से चुनाव मैदान में हैं, जबकि एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार बारामती में अपने भतीजे और एनसीपी एसपी उम्मीदवार योगेंद्र पवार के साथ उनका मुकाबला है। अगर हम पार्टियों की बात करें तो सत्तारूढ़ महायुति में भाजपा में 149 सीटों पर चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने 81 सीटों पर और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 59 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़े किए हैं। वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस ने 101 उम्मीदवार, शिवसेना यूबीटी ने 95 और एनसीपी एसपी ने 86 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भी यहां 237 सीटों पर चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कनकलता, मैं यहां आपको बताना चाहूंगी कि शिवसेना और एनसीपी के विभाजन के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है और एक तरह से कह सकते हैं ये चुनाव ही नई पार्टियों के भविष्य का निर्णय करेगी।
जानकारी के लिए धन्यवाद प्रार्थना। झारखंड में 12 जिलों के 38 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा, जबकि नक्सल प्रभावित 31 बूथों में सुरक्षा कारणों से मतदान शाम 4 बजे समाप्त हो जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार दिन में 1 बजे तक 47.92% से अधिक मतदान हुआ। और जानकारी के लिए बात करते हैं सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हमारे संवाददाता के लाल से। के लाल जी, झारखंड के लिए कहा जाता है कि संथाल जीतने वाला राज करता है। आज जिन 38 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें से 18 सीटें संथाल परगना के 6 जिलों में है। यहाँ मुख्य मुकाबला किन दलों में है?
सही कहा आपने, जो संथाल जीतेगा वही झारखंड पे राज करेगा। एनडीए और इंडिया ब्लॉक के लिए आज का मतदान काफी अहम है। 38 सीटों में से 18 विधानसभा क्षेत्र संथाल परगना और कोयलांचल में है। आज का मतदान यह तय करेगा कि इन दोनों क्षेत्रों में किसका जादू चला। इन सीटों पर हार जीत से ही सत्ता की राह का समीकरण तय होगा। मैं बताना चाहूंगा कनक कि पिछले विधानसभा चुनाव में संथाल परगना की 18 सीटों में से 14 सीटों पर इंडिया ब्लॉक को सफलता मिली थी और बीजेपी को 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। वहीं ये पिछले विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 9 सीटों पर सफलता मिली, कांग्रेस को 4 और झारखंड विकास मोर्चा को 1 सीट पर सफलता मिली थी और भाजपा के खाते में केवल 4 सीट आई। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि संथाल परगना में जो 8 का मतदान हो रहा है वो दोनों गठबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण है। कनक,
जानकारी के लिए धन्यवाद केके लाल जी। और अब चलते हैं खिजड़ी क्षेत्र में मौजूद हमारे संवाददाता शिल्पी के पास। शिल्पी, मतदान कैसा चल रहा है?
झारखंड के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान का प्रतिशत काफी उत्साहजनक है। दोपहर 1 बजे तक 47.92% वोटिंग दर्ज की गई है। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और अभी तक किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। रांची जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा क्षेत्रों में 52.1% मतदान हो चुका है। खिजड़ी निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सभी से घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। अब तक पाकुड़ जिले में सबसे अधिक 53.83% मतदान रिकॉर्ड हुआ है।
धन्यवाद शिल्पी। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी मतदान हो रहा है। इनमें उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4, केरल और उत्तराखंड की 1-1 सीट के साथ महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट शामिल है। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्वक मतदान की खबर है और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। सुशील जी, लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में इंडिया ब्लॉक और एनडीए दोनों के लिए चुनावी मैदान में ये पहली चुनौती है, कैसा माहौल है वहाँ?
देखिए कनक, ये उपचुनाव दोनों ही गठबंधनों के लिए, जो एनडीए गठबंधन है उसके लिए और जो सत्ता पक्ष का एनडीए गठबंधन है उसके लिए बेहद अहम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इन चुनावों की जिम्मेदारी संभालते हुए लगभग सभी सीटों पर सभाएं की, कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज लगाई गई 9 सीटों पर चुनावी प्रबंधन के लिए और प्रचार के लिए। उम्मीदवारों के चयन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया और खासतौर पर लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा तो उसकी कसर इन उपचुनाव को जीत करके योगी आदित्यनाथ ये साबित करना चाहते हैं कि प्रदेश में खासतौर पर उनकी सरकार को लेकर के लोगों में अभी भी उतना ही उत्साह है। वहीं दूसरी ओर जो एनडीए गठबंधन है उसके लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि अखिलेश यादव का जो पीडीए का उनका फॉर्मूला था वो लोकसभा चुनाव में उससे उनको बहुत मदद मिली, लेकिन अचानक से मिल गई जीत नहीं था बल्कि ये उनका फॉर्मूला अभी भी काम कर रहा है और लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी ये काम करेगा। लिहाजा दोनों ही पक्षों के लिए ये बेहद अहम उपचुनाव है। जी कनक,
धन्यवाद सुशील। कानपुर सिटी की सीसामाओ विधानसभा सीट पर मतदाताओं को वोट डालने से रोकने और उनकी जांच से संबंधित दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मी को चुनाव आयोग के आदेश के बाद बर्खास्त कर दिया गया है। जिन अन्य जिलों में आज उपचुनाव कराए जा रहे हैं वहां भी कार्रवाई की जा रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्बाध चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पंजाब के 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान सुचारू रूप से जारी है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय के अनुसार दोपहर 1 बजे तक 36.46% मतदान दर्ज किया गया। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राजेश बाली से। राजेश जी, सुपना में किन प्रमुख उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है?
जी कनक, गिदरबहा जो श्री मुक्तसर साहेब का कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। यहाँ भाजपा के उम्मीदवार हैं जो पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं मनप्रीत सिंह बादल, और आम आदमी पार्टी के हरदीप सिंह, डिम्पी ढिल्लों और कांग्रेस की अमृता वड़िंग है जो आमने सामने है। जबकि डेरा बाबा नानक जो कि गुरदासपुर का एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की, वहां पर भाजपा के रवि किरण सिंह काहलो हैं, कांग्रेस की जितेंद्र कौर हैं और आपके गुरदीप सिंह रंधावा मैदान में हैं। कनक,
धन्यवाद राजेश। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम जॉर्ज टाउन में गयाना के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद इरफान अली से वार्ता करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री 3 दिवसीय यात्रा पर आज सुबह गयाना पहुंचे। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए राष्ट्रपति अली ने खुद एक दर्जन से अधिक कैबिनेट मंत्रियों के साथ हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
श्री मोदी की यह यात्रा 56 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की गयाना की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री आज दूसरे कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और इस क्षेत्र के साथ भारत की दीर्घकालिक मित्रता को और मजबूत करने के लिए कैरिकॉम सदस्य देशों के नेताओं के साथ बैठकें करेंगे। श्री मोदी कल गयाना के संसद को संबोधित करेंगे। उनका प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। हाल ही में भारत गयाना के बीच उच्च स्तरीय संबंधों में तेजी आई है। गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली पिछले साल हुए प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
यात्रा के दौरान गयाना की सरकार प्रधानमंत्री मोदी को सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस प्रदान करेगी। बाबाडोस भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रतिष्ठित ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बाबाडोस से सम्मानित करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM प्लस में भाग लेने के लिए लाओस की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। बैठक के दौरान वे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर मंच को भी संबोधित करेंगे। ADMM आसियान में सर्वोच्च रक्षा परामर्शदात्री और सहयोग तंत्र है। सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था $30 बिलियन के उद्योग के रूप में उभर चुकी है। श्री वैष्णव ने अंग्रेजी और हिंदी के समाचार पत्रों में प्रकाशित एक लेख में ये बात कही। गोवा में आज शाम से शुरू हो रहे 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव को लेकर श्री वैष्णव ने कहा कि अगले 8 दिन के इस कार्यक्रम में सैकड़ों फिल्में दिखाई जाएंगी। 55वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भव्य उद्घाटन समारोह के साथ आज गोवा में शुरू हो रहा है। ये इस महीने की 28 तारीख तक चलेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में सूचना प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा कि इस वर्ष फिल्म महोत्सव में कई नई पहल की गई है और ये युवा फिल्मकारों को समर्पित है। उन्होंने बताया कि 100 युवा प्रतिभाएं क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्लेटफॉर्म पर अपनी सृजन क्षमता प्रस्तुत करेंगी।
टीवी द्वारा इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। साथ ही साथ हम पूरा आर्काइवल मटेरियल भी उसमें लेके आ रहे हैं। दूरदर्शन का, फिल्म डिवीजन का, हमारे डॉक्यूमेंट्रीज हैं, हमारे फोटोज हैं, उन सबको लेकर इस OTT के साथ में लाया जा रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये अपनी शख्सियत हासिल करेगा और इसके साथ बहुत लोग जुड़ेंगे।
इस वर्ष समारोह में 100 देशों की 400 से भी अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
इस समय पणजी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में उद्घाटन समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। आज शाम समारोह में शानदार प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी जिसमें 90 के दशक की यादें ताजा करने वाले रिवाइंड और टाइमलेस सोल्स जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। आज शाम दर्शकों को साइलेंट एरा से लेकर आज की ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक भारतीय सिनेमा की यात्रा भी दिखाई जाएगी। फिल्म महोत्सव में 81 देशों की 180 से अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी। इसके अलावा अब तक के सबसे बड़े फिल्म बाजार, मास्टर क्लास और इफिएस्टा और कार्निवल परेड जैसे कार्यक्रमों के साथ इफ्फी 2024 सिनेमा के भव्य त्योहार की शुरुआत होने को है। दुर्गेश भदौरिया के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए ओमवेश उपाध्याय, पणजी, गोवा।
बैडमिंटन में भारत की खिलाड़ी पीवी सिंधु और मालविका बंसोड़ आज चीन के शेंझेन में चाइना मास्टर्स 2024 टूर्नामेंट में जीत के साथ प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स के पहले दौर में मलेशिया की बुसानन ओंग बाम रुंगफान को हराया। बिहार के राजगीर में महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला चीन से होगा। सेमीफाइनल में कल भारत ने जापान को 2 गोल से हराकर फाइनल में प्रवेश किया, वहीं चीन ने मलेशिया को हराया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाराष्ट्र में एक ही चरण के विधानसभा चुनाव में दोपहर 1 बजे तक 32.18% से अधिक मतदान। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी शांतिपूर्ण मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक 47.92% से अधिक वोट डाले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना पहुंच गए हैं। वे आज शाम जॉर्जटाउन में राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद इरफान अली से बातचीत करेंगे। गयाना ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस देने की घोषणा की। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज गोवा में शुरू होगा और बिहार में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला चीन से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।